हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। गुजरात, निमानी हाउस। शाम के करीब 5 बजे थे जब अनाही अपने कमरे में बालकनी में बैठी थी। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था और सामने लैपटॉप खुला हुआ था जिसमें वो कुछ ऑफिस वर्क कर रही थी। क्योंकि अभी डिनर बनाने में काफ़ी टाइम था तो उसने सोचा कि वो थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लेती है। उसे खाली बैठना पसंद नहीं था। अचानक ही उसे बाहर से कार रुकने की आवाज़ आई। अनाही की बालकनी ठीक मेन दरवाजे की तरफ थी जिस वजह से कोई भी बाहर से आई गाड़ी वहां से आराम से दिख जाती थी। अनाही ने एक नज़र बाहर की तरफ देखा जहां रूहान की ब्लैक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी थी। रूहान ने उसे पार्किंग में लगाया और फिर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए अंदर की तरफ गया। अनाही ने कन्फ्यूजन में भीरे से कहा, आज रूहान जी इतनी जल्दी आ गए? वहीं रूहान तेज कदमों से घर के अंदर इंटर हुआ और सीधे माधवी के कमरे में चला गया। क्योंकि जब जब वो डॉक्टर रश्मि के पास जाकर आता है उसके अतीत के घाव उभर आते हैं और उसे हमेशा उस वक्त एक ऐसी गोद चाहिए होती है जिसमें सोने पर उसे ममता का एहसास हो। रूहान जैसे ही माधवी के कमरे में इंटर होता है माधवी एकदम से चौंक जाती है क्योंकि फिलहाल वो राधिका के पास बैठकर अनाही के खिलाफ रूहान को भड़काने के लिए ही प्लान तैयार कर रही थी। उसने जैसे ही रूहान को देखा एक पल के लिए उसकी आंखें हैरानी और घबराहट के मारे बड़ी बड़ी हो गईं। उसे डर था कि कहीं रूहान ने उसकी और राधिका की बात तो नहीं सुन ली, लेकिन फिलहाल रूहान का ध्यान बातों पर नहीं था। उसकी आंखें सिर्फ माधवी को तलाश रही थीं। वो अंदर जाकर माधवी के पास बैठ गया और फिर अपना सर झट से उसकी गोद में रखते हुए बोला, आज बहुत थकान महसूस हो रही है ताई जी। उसकी ये बात सुनकर माधवी ने आंखें घुमाते हुए राधिका को वहां से जाने का इशारा किया, जिसके साथ ही राधिका हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चली गई और माधवी ने आहिस्ता से रूहान के बालों में हाथ घुमाकर कहा, कितनी मार कहा है तुम्हें, ऐसे काम मत किया करो जिससे तुम्हें थकान महसूस हो। क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? जब तक तुम्हारे ताऊजी और चाचाजी जिंदा हैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे शरीर में बहुत सारी कमजोरी है जिस वजह से तुम जल्दी थक जाते हो, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत वाला काम करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर माधवी ने झुकते हुए एक बार रूहान के बालों को चूम लिया जिसके साथ ही रूहान की आंखें सुकून से बंद हो गईं। कुछ पल के बाद रूहान उठकर बैठा और माधवी के गले लगाते हुए बोला, थैंक यू ताई जी, अब मुझे शावर लेना है, बहुत इचिंग हो रही है, शाम को डिनर पर मिलते हैं। माधवी ने मुस्कुराकर हाँ कहा और रूहान वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तो वहीं उसके जाते ही माधवी ने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ये लड़का कभी कभी मुझे इतना डरा देता है। वहीं रूहान बेफिक्री से कमरे के अंदर जाता है और अंदर जाते ही अपनी शर्ट निकालकर बेड पर फेंक देता है। वहीं अनाही जो उससे बात करने के लिए उसके पास आ रही थी उसको इस तरह देखकर एकदम से हड़बड़ाते हुए वापस मुड़ने लगी और सीधा ग्लास डोर से टकरा गई। वहीं रूहान ने जैसे ही एक साथ इतनी चूड़ियों के खनकने और पायल बजने की आवाज़ सुनी उसने तुरंत गर्दन घुमाकर देखा। अनाही को ग्लास डोर के पास ऐसे खड़े देखकर उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, मैडम जी आप ग्लास डोर से क्या बातें कर रही हैं, इतनी चिपक कर क्यों खड़ी हैं उससे? रूहान की बात सुनकर अनाही ने शर्मिंदगी में एक पल के लिए अपनी आंखें भींची और फिर मुड़कर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं एक्चुअली मैं तो आपसे ही बात करने के लिए आ रही थी। रूहान जिसका सर दर्द से फट रहा था उसने झुंझलाकर कहा, इतना हिचकिचा क्यों रही हैं आप, बोल दीजिए जल्दी से, मुझे शावर लेना है। फिर रूहान ने अभी तक अनाही से इस टोन में बात नहीं की थी। अचानक उसका बदलता मिजाज देखकर अनाही की आंखें छोटी हो गईं। हाँ एक हद तक वो रूड बिहेवियर को टॉलरेट कर सकती है जहाँ तक सामने वाला चिल्लाने या झल्लाने के बजाय सिर्फ हल्का रूड होकर बात करे वो भी किसी कारण से। अगर कोई बेवजह उसे कुछ कहता है तो ये सुन पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अनाही ने तेज लेकिन शांत स्वर में कहा, रूहान जी अगर आपको शावर लेना है तो आप ये बात आराम से भी बोल सकते हैं और वैसे भी मुझे जो बात करनी है उसके लिए आपके पास थोड़ा वक्त होना चाहिए, इसलिए अभी आप शावर ही ले लीजिए, बाद में बताती हूँ। रूहान में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी फिलहाल अनाही के साथ बहस करने की, इसलिए वो तेज कदमों से बाथरूम के अंदर चला गया और अनाही बस उसे देखती रह गई। उसका पूरा मूड तहस नहस हो चुका था। वो वापस बालकनी में गई और अपना कॉफी मग हाथ में लेते हुए बोली, अगर रूहान जी को इंटरेस्ट नहीं है मुझसे बात करने में तो फिर कल इतना नाराज क्यों हो रहे थे मुझसे जब मैंने बात नहीं की थी। ये कन्फ्यूजिंग बिहेवियर कुछ ओवरलोड हो रहा है आज तो। मैं मिसअंडरस्टैंडिंग और ये बिहेवियर दोनों के बारे में रूहान जी से बात करके रहूंगी। मुझे इस रिश्ते में पूरी जिंदगी रहना है, सिर्फ कुछ पल के लिए नहीं, जो मैं सीधा सीधा हर बदतमीजी को टॉलरेट करूंगी। कुछ देर रूहान बाथरूम से शावर लेकर बाहर आया। उसकी कमर पर एक वाइट टॉवल लिपटा था और उसके सीने पर पानी की बूंदें ठहरी हुई थी, जो उसके चौड़े सीने और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उसके गीले बाल उसके फोरहेड पर बिखरे थे और उसे एक हॉट लुक दे रहे थे। रूहान हाथों से बाल झाड़ते हुए सीधा क्लोजेट की तरफ गया और वहां से एक वाइट टी शर्ट और उसके नीचे ब्लैक ट्राउजर पहनकर बाहर आया। अनाही, जो उसके आने का इंतजार कर रही थी, उसके आते ही वो रूहान के सामने जाते हुए बोली, क्या अब हम बात कर सकते हैं? रूहान उसकी बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही शुभी दौड़ते हुए वहां आई और रूहान ने झुकते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर बेड पर बैठ गया। उसे वो अपनी गोद में लेकर उसके वाइट बालों को सहलाते हुए बोला, बोलो मैडम जी, इतना भी क्या जरूरी काम है आपको मुझसे जो इतनी बेताबी हो रही है? इस बार भी उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था, जो ऑब्वियसली आज के साइकाइट्रिस्ट सेशन का नतीजा था। लेकिन ये सब अनाही को नहीं पता था, इसलिए उसे रूहान के टोन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर भी वो अपने गुस्से को काबू करते हुए रूहान के पास जाकर उससे कुछ दूरी पर बैठते हुए धीरे से बोली, आप आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं, कुछ हुआ है? रूहान ने बस ना में गर्दन हिला दी। उसके मुंह से शब्द ना सुनकर अनाही का मन किया वो उठकर फिर से बालकनी में चली जाए, क्योंकि उसे सामने से सिर्फ इशारे मिल रहे थे, जवाब नहीं। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे विहा बता रही थी कि आपको लग रहा था सुबह की मैं आपके लिए काफी नहीं बनाई है। रूहान, जिसका ध्यान फिलहाल अनाही की बातों में बिल्कुल नहीं था, उसने झुंझलाकर कहा, क्या आपको बस यही बातें करनी है? मुझे सीधा पॉइंट पर आइए, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट करना है। अनाही ने बिना बात को घुमाए सीधे कहा, आपकी तैसी आपसे झूठ बोल रही थी सुबह, और मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो किसी रिश्ते में चुगली करके उन रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करती हैं। नहीं, शायद यही बात अगर सुबह बोलती या कल के दिन बोलती तो रूहान का रिएक्शन कुछ और होता, लेकिन आज ही तो उसने अपने बचपन का वो पल फिर से जिया था। माधवी के लिए उसके दिल में प्यार फिलहाल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था। उसने जैसे ही अनाही के मुँह से माधवी की बुराई सुनी, वो गुस्से से बौखलाते हुए बोला, जुबान संभाल कर बात करिए, वो मेरी ताई जी हैं, मैं उनके बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा।